हम सभी के बीच में आदरणीय दुर्गेश दीदी जी हैं। सभी आदरणीय दीदी जी का एक हाथ से की ताली से वेलकम करेंगे। आदरणीय दुर्गेश दीदी जी, आपको बचपन से ही अध्यात्म में रुचि रही, इसलिए जैसे ही आपको बाबा का परिचय मिला तो आपने ब्रह्म कुमारी जीवन को अपनाया। आप करीब 42 वर्षों से संस्थान में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप रिलीजन विंग के जर्नल कोऑर्डिनेटर भी हैं। आपने अनेक स्थानों पर अपने वक्तव्य दिए हैं। आप सरल स्वभाव और मृदभाषी भी हैं। वर्तमान समय आप मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी चित्रकूट में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आदरणीय दीदी जी से मैं अनुरोध करूंगी कि हम सभी को आप योग की गहराइयों का अनुभव कराएंगे और प्यारे बाबा के साथ का अनुभव हम सभी कैसे बढ़ाएं वर्तमान जीवन में, वर्तमान समय को देखते हुए। तो आदरणीय दीदी जी की हम बहुत सुंदर सुंदर योग की गहराइयों के अनुभव सुनेंगे। आदरणीय दीदी जी,
ओम शांति। सभी यहाँ बाबा के अनमोल रतन, मुख्य रूप से एक ही संकल्प से बैठे हुए हैं और एक ही संकल्प से यहाँ आए हैं। हम सब मिलन मेला मिलाने के लिए आए हैं ना। और वास्तविक रूप में संगम का अर्थ ही है मिलन मनाना। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जब तक व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसको विश्राम नहीं है। क्योंकि मैं एक धार्मिक नगरी से आई हूं, हमारी बहन जी ने परिचय दिया कि मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी, लेकिन मैं ये उत्तर प्रदेश में रह रही हूं और उत्तर प्रदेश में ही चित्रकूट का आधा से ज्यादा स्थान है। सिर्फ दो ही स्थान चित्रकूट के एमपी में हैं और उन दो स्थानों की एक बहुत बड़ी महिमा है। एक का नाम है गुप्त गोदावरी, शायद आप लोग ने सुना हो, और दूसरे का नाम है सती अनुसुईया। और मैं समझती हूं कि संगम से उसका बहुत गहरा रिश्ता है और इतना गहरा रिश्ता है कि हमारी जितनी भी ये बांधेली माताएं तपस्या कर रही हैं यही सती अनुसुईया हैं, क्योंकि अपने कुल का उद्धार यही करती हैं। कहते सती अनुसुईया ने जल निकाला था और यही हमारे जो ज्ञान की गुप्त धारा बहाती हैं वही गुप्त गोदावरी भी है। अभी हम वास्तविक रूप में यहाँ आपस में कोई क्लास कराने या कोई स्पीच करने नहीं बैठे हैं, बल्कि हम थोड़ा सा अपना जीवन का योग से जो अनुभूति शक्ति प्राप्ति निश्चय बल बुद्धि का विकास दिव्य शक्तियां परमात्म मिलन का निरंतर का संग का रंग चढ़ता है वो कैसे और कितना सहज है ये अनुभव शेयर करेंगे। हम सभी वास्तविक रूप में अभी कुछ दिनों से लगातार बाप दादा की मुरली सुन रहे हैं। अव्यक्त और साकार दोनों ही मुरली हमें लगभग एक मास से, जनवरी मास तो सभी को मालूम ही होगा अव्यक्त मास है। अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए हमारे बहुत अच्छे अभ्यास कराए जा रहे हैं। सभी भाई बहन हम समझते हैं उसमें अच्छा लाभ ले रहे होंगे, परंतु उससे पहले भी हमें एक इशारा दिया गया कि सेवा सर्विस पर सर्विस सर्विस करते करते बीच में बाबा ने कई बार ये इशारा दिया कि आत्मिक स्थिति में सेवा करो, दिव्य बुद्धि से लोगों को सकास दो। जहां सकास का प्रश्न आता है वहां निश्चित स्पष्ट है कि योग का बल हमारे में जमा होना चाहिए। जब तक हमारे अंदर खुद शक्ति जमा नहीं है तो हम दूसरों को दे नहीं सकते हैं, और देने का एक ही मात्र माध्यम है और वह है मनसा सेवा। क्योंकि अब लास्ट का समय आ रहा है, कोर्स रिवाइज कोर्स रियलाइजेशन कोर्स, बहुत विधियां हैं ब्राह्मणों के द्वारा सेवाओं की, मेले प्रदर्शनी, विभिन्न प्रकार के नृत्य नाटिकाएं, शोभा यात्राएं, अब ये सब करने का समय शेष नहीं रहा। और मैं अपने जीवन में ये अनुभव करती आई, सौभाग्य से कहें, परम सौभाग्य से कहें, ईश्वरीय अनुकंपा से कहें, हमें यज्ञ के बाल्यकाल में ही आदरणीय राजयोगी भ्राता महेंद्र भाई जी का पालना मिली, जो हमारे जोनल डायरेक्टर एवं जोनल इंचार्ज थे, जिन्होंने हमें जीवन में योग को एक कला के रूप में जीना सिखाया, जिन्होंने योग को साथी बनाना सिखाया। और योग के बल से इस सारी सृष्टि की पालना हुई है, ये शास्त्रोक्त भी है, आध्यात्म भी इसका जीता जागता उदाहरण है। कहा गया है तप के बल से विधाता सृष्टि की रचना करता है, ये पहले रामायण गीता इनमें सुना और सुनाया था, सुना भी था और सुनाया भी था, क्योंकि मैं 12 वर्ष की बाल्यकाल की अवस्था में अच्छी रीति, वैसे तो रोज ही रामायण वगैरह अपने जो कर्मचारी घर में आते थे, मोहल्ले वाले थे, उनको सुना देते थे, लेकिन जब 12 वर्ष की कर्म आई हुई तो विशेष रूप से सप्ताह में एक दिन मंगल को कम से कम 50-60 महिलाएं इकट्ठी होती थी, कोई भी एक भजन का, जैसे बाबा मुरली के पहले गीत सुनाता है, वो लोग गाती थी और उसका अर्थ समझा देते थे। पर तब हम खुद नहीं जानते थे कि परमात्म मिलन का आधार तप है, योग है। अब जब बाबा मिला, मुश्किल से 16 वर्ष की आयु, 17 वर्ष की आयु भी नहीं थी, बाबा के मिलन की घड़ी आई। 74 में सतना सेवा केंद्र के संपर्क में एक मेला हुआ, शिव दर्शन मेला। मैंने देखा कि वास्तविक रूप में अनंत आत्माएं वहां एकत्र हैं, और उस शिव दर्शन मेले में बहुत ही प्रिय नृत्य नाटिका दिखाई जा रही थी, परंतु उस समय मुझे इतना अवसर नहीं दिया गया कि मैं उस मेले का पूरा लाभ लेती। पर जैसे ही बाबा का एक मार्ग खुला, लौकिक भाई प्रतिदिन क्लास में जाते थे, लिख करके लाते थे बाबा की वहां वाक्य, कोर्स नहीं किया मैंने, क्लास ज्वाइन नहीं की, पहले ही महावाक्य पढ़ना शुरू किया है, क्योंकि मैं थोड़ा लौकिक शरीर को आराम दे रही थी, या तो कहूं या शारीरिक परीक्षा दे रही थी, तो चल नहीं सकती थी, आश्रम जा नहीं सकती थी, कुछ ऐसी कठिन परीक्षाएं थी। ये दृष्टांत इसलिए बता रही हूं कि शरीर का बंधन आपको बाबा से विमुख नहीं कर सकता है, बल्कि शरीर का बंधन बाबा के संबंध का माध्यम बनता है। और जैसे ही बाबा की वाणी ने अपना रंग चढ़ाया, अभी 4-5 ही दिन हुए थे, एक दिन प्रकाश भाई, मैं समझती हूँ भोपाल जोन के अधिकांश भाई बहन जानते ही होंगे, जो नहीं जानते होंगे तो वो जान ले, मेरे लौकिक भाई थे, हैं अलौकिक भाई हैं इस समय। उन्होंने कहा मैंने 2 आत्माओं को ले जाने का दीदी संकल्प किया है, और उसमें कोई दूसरों को कहने से अच्छा, क्योंकि वो भी एजुकेशन कर रहे थे, समय भी नहीं होता था, तो कहा कि मम्मी तो चलने को तैयार हैं, पर पापा जी को किसी ने कह दिया तो वो नहीं जा रहे हैं। तो मैंने कहा आपने आत्मा ले जाने का संकल्प किया है ना, कोई शरीरधारी का तो बताया नहीं कौन को लाएंगे, क्योंकि आपको शायद मालूम हो पहले किसी भी आत्मा को ब्रह्मा कुमारी का संदेश देना बहुत कठिन काम था, बहुत मुश्किल था। बाबा के घर तक लाना जैसे वो लोग सोचते थे हम कहीं अन्यत्र जगह जा रहे हैं, तो उनके योग के बल की शक्ति का प्रभाव कहें, या जो वाणी पढ़ के मेरा मन बाबा से जुड़ जाता था, उस समय हम रूह-रिहान तो नहीं जानते थे उसे, लेकिन इतना रूह-रिहान करते थे कि अगर 12 बजे भी उठे तो सोचते थे कि बाबा की जो महिमा इसने लिखी है बस उसका चिंतन करना है। अर्थात नींद का त्याग करके, जो फिर बाद में भाई साहब ने हम लोगों को पक्का पाठ कराया कि नींद को जीतने वाला ही जगत जीत बनेगा। तो योग की अनुभूति करने के लिए एकांत चाहिए, और एकांत 2 बजे रात्रि से, 1:30 बजे रात्रि से, 2:30 बजे 3 बजे रात्रि से, नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 4:45 बजे बैठ जाइए, 4 बजे बैठ जाइए, क्योंकि काफी भाई बहन पहली बार आए हैं इसलिए ये अनुभव उनसे शेयर कर रही हूं। आप किसी से कुछ मत मांगिए, और योग के बल से आपकी सारी आशाएं पूर्ण हो जाएंगी। जिन आत्माओं में योग की चाहना है वो सबसे पहला पाठ पक्का करें कि मैं बाबा का, बाबा मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, और सर्व संबंध बाबा से हैं, कोई संसार में मेरा नहीं है, कोई संसार में मेरा नहीं है। पहला पाठ ये यदि अंदर से पक्का है तो वो आत्मा कभी बाबा से दूर नहीं जा सकती, अन्यथा जिन संबंधों से आप लौकिक में जुड़े हुए हैं, देह के संबंध आपको एक ना एक दिन पुनः लौकिक की तरफ खींच के ले जाएंगे। इसलिए जिस संबंध से ज्यादा अट्रैक्शन है, जिस संबंध से विशेष लगाव है, उस संबंध को अलौकिक में ट्रांसफर कर दें, अर्थात वह संबंध शिव बाबा से जोड़ लें। जितना जितना आप बाबा के नजदीक जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम हो हमारे पास पिन 1 है, उसे यदि आप दूसरे स्विच के साथ जोड़ेंगे तो वो उसी में बस जुड़ के रह जाएगा। इसलिए हमारा बुद्धि रूपी पिन जो है सिर्फ बाबा के साथ जुड़ना चाहिए। तो दुनिया से जितना जितना डिटैचमेंट होगा उतना उतना बाबा से हमारा अटैचमेंट होता जाएगा। मूल बात है डिटैचमेंट होता कब है और कैसे होता है, या हम कैसे डिटैच हूं, क्योंकि कई बार लोग एक ही पुरुषार्थ को दो बार तीन बार करने के बाद ऐसा समझ लेते हैं कि हम इस पुरुषार्थ में सफल नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि हमारा मन का जुड़ाव पहले होना चाहिए। तन से आप योग कक्ष में दिन में एक बार जाके बैठते हैं, परंतु उठते बैठते चलते फिरते कर्म करते संपूर्ण समय आपकी बुद्धि मन कहां पर भटकता है ये चेक करें। सिर्फ चेक करने से काम नहीं चलेगा, हम चेक करें और चेंज करें, चेक करें चेंज करें और माया को चैलेंज करें। योगी आत्मा वो नहीं है जो जबरदस्ती योग लगा रही है। अभी आप सुन रहे थे योगी जीवन एक वरदान है, और वो भी कैसा, प्रभु का वरदान है। जो चीज प्रभु ने दे दी उस चीज को मांगने की क्या आवश्यकता है, ढूंढने की क्या आवश्यकता है। परंतु होता क्या है कि हम मिट्टी का हाथ छोड़ना नहीं चाहते हैं। छोटे बच्चों की तरह से खिलौना तो लेना चाहते हैं, परंतु जो मिट्टी का हाथ है, बुद्धि रूपी हाथ है, एक ही हाथ है, उसमें हम देह और देह संबंध की मिट्टी को भरकर रखे हुए हैं। उसकी पूरी की पूरी चिप हमारी फुल है, कहीं भी कोई भी प्रकार का गैप नहीं छोड़ते। चलते फिरते उठते बैठते, अभी अभी इंद्रप्रस्थ से मैं जैसे जैसे आ रही थी, कानों में आवाज आई, कुछ माताएं झूले पर बैठे देह संबंधों के गीत गा रही थी। शायद हो सकता वो इसमें उपस्थित हूं, या शायद अभी भी गा ही रही हूं झूले पर बैठे बैठे। अतीन्द्रिय सुख के झूले की जगह जब देह संबंधों के झूले आप झूलते हैं तो बाबा से आप डिटैच हो जाते हैं। बाबा ने पहली मर्यादा दी है अपने को आत्मा समझ, मुझ एक बाप को याद करो। अपने जीवन का यह लक्ष्य हो कि मैं एक सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं। अवस्था को ऊंच बनाने की एक सबसे बड़ी कला या विधि या प्रतिभा ये है कि मैं एक सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं कल्याणकारी आत्मा हूं, मैं विशेष आत्मा हूं, मैं बाप दादा की चुनी हुई आत्मा हूं। ऐसा अभ्यास जब आप करेंगे तो आपको ये संकल्प रहेगा कि जिस तरह कर्म करते हुए हम आंखें शरीर की यूज करते हैं, मैं आत्मा कर्म करती हूं, मुझे आंखें बाहर की नहीं है, बाहर की आंखें हम किसकी यूज करते हैं, इस शरीर की, स्थूल शरीर की। तो इन आंखों को हम आत्मिक दृष्टि से देखने में ही यूज करें, सारे दिन की दिनचर्या में ये फुल अटेंशन हो। दूसरी बात, हम जिस तरह से बाहर के कर्म के लिए इस बाहर की आंखों को यूज करते हैं, ठीक उसी तरह योग की शक्ति, मनसा सेवा, अन्य आत्माओं को सकाश देने के लिए दिव्य बुद्धि की आंखों का प्रयोग करें। हर क्षण हमारी बुद्धि शुभ सोचे, श्रेष्ठ सोचे, कल्याणकारी ही सोचे, हमारी वाणी, हमारे विचार, हमारे दूसरों की प्रति संकल्प पवित्र हों। और पवित्रता की भी वो सीमा है जो बाबा ने दी है, और उस सीमा का नाम है श्रीमत, अर्थात हमारा सोचना, बोलना, करना, चलना, खाना पीना, शयन करना तक भी। कई बार बाबा ने मुरलियां चलाई हैं, आदरणीय भाई साहब ने, दादियों ने, दीदियों ने ये क्लासेस दी हैं, हमने अनुभव किया कि यदि तुम शयन भी कर रहे हो तो लोगों की दृष्टि संसार की दृष्टि तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि तुम साधारण आत्मा नहीं हो, विशेष पार्टधारी हो। अपने पार्ट पर जिसका फुल अटेंशन हमेशा रहता है वो आत्मा योगी, तू आत्मा स्वतः ही बन जाती है, क्योंकि उस आत्मा को एक भी सेकंड वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता है। वो स्वयं के लिए पुरुषार्थ करती है और उसी पुरुषार्थ के श्रेष्ठ अवस्था के द्वारा वो अनंत आत्माओं को, निर्बल आत्माओं को शक्ति, सकास, साहस और बल देकर ऊंचा उठाने का कार्य करती है, जिसके रिटर्न में उस आत्मा को सहज ही दुआएं, शुभकामनाएं और रिटर्न में उसे शुभ भावना का दान मिलता जाता है, और उस दान से, उस शक्ति से, उस योग बल से वो आत्मा उसे आप समान सो बाप समान बनाने में सफल हो जाती है। तो योगी तू आत्मा वो आत्मा है जो आत्मा दूसरी आत्माओं के भी पुरुषार्थ को बढ़ाने के निमित्त बनती है। दूसरी स्टेज वो आती है जिसमें योगी तू आत्मा प्रयोगी बन जाती है, अर्थात अपने योग के बल से, अपनी प्राप्त की हुई अष्ट शक्तियों से, अपने निमित्त जीवन से, अपने व्यवहारिक कलाओं से, योग की वाइब्रेशन से, प्रकंपन से वो आत्मा अनन्य आत्माओं को, दूसरी आत्माओं को, संबंध में आने वाली आत्माओं को, कारोबार में साथी आत्माओं को, संबंधी आत्माओं को प्रकंपन दे करके, उनको आकर्षित करके उनके द्वारा अपनी सेवाओं को आगे भी बढ़ाती हैं और उन आत्माओं की अवस्था को भी ऊंचा बढ़ाने की निमित्त बन जाती है। तो यदि आप नए से नए भी हैं तो कम से कम बाबा ने जो कहा है, चैरिटी बिगेंस एट होम। आप विश्व का कल्याण नहीं कर पा रहे हैं, आप मान लीजिए बहुत बड़े एक राष्ट्र का कल्याण नहीं कर पा रहे हैं, आप मान लीजिए एक बड़े समाज का या एक क्षेत्र का कल्याण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा हर आत्मा विश्व कल्याणकारी है। किस बेस पर? कि वह आत्मा 100% श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ संकल्पधारी है। संकल्प हर कर्म का बीज है और योगी के हर संकल्प फलीभूत होते हैं, क्योंकि योगी वास्तविक रूप में एक श्रेष्ठ संत है।
भर
तो वास्तविक रूप में ही हमारा इसके आगे का स्वरूप होता है नियोगी। हम अपनी संकल्प शक्ति को, अपनी वाणी की शक्ति को, साधना से प्राप्त की हुई रूहानी शक्तियों को, जो हमें ईश्वर ने वरदान स्वरूप दी हैं, स्व के कल्याण में, विश्व के कल्याण में, अनंत आत्माओं के कल्याण में, पांचों तत्वों के कल्याण में, अथवा उनको सतो प्रधान बनाने के लिए ही प्रयोग करें, उन्हें एक भी क्षण के लिए साधारण कार्यों में, लौकिक कार्यों में, अपने स्वयं के हित के कार्यों में लगाकर साधारण, व्यर्थ या जाया ना करें। जिन्हें इतना अपने जीवन में स्वयं अटेंशन हो जाता है, धारणा करते हैं, जैसे कोई बचत जब करता है तो उस बचत को दूसरे को दे पाता है, परिवार को, समाज को, लौकिक दुनिया में पैसे की बचत को ही बचत समझते हैं, लेकिन ठीक इसी तरह से आज आप देख रहे होंगे जल संरक्षण वाले पानी की बचत की बात करते हैं। तो ज्ञान पानी से भी श्रेष्ठ है। ज्ञान का हम मनन चिंतन कर रहे हैं, उसका संचय कर रहे हैं, उसका नियोजन कर रहे हैं, उसकी पॉइंट्स को अपनी बुद्धि में रख रहे हैं, क्योंकि बाबा ने ज्ञान का अथाह भंडार दिया है। हम यहाँ आए हैं मिलन मनाने, गंगा चलती है सागर से मिलन मनाने के लिए, लेकिन रास्ते में कितनी सारी धरणी को सिंचित करती जाती है, जबकि उसका उद्देश्य केवल क्या है, सागर से मिलना। हम आए हैं बाबा से ज्ञान लेने, बाबा से जीवन बनाने, बाबा से पढ़ाई पढ़ने। हमारा तो आने का बड़ा विचित्र कारण था, हमने तो सोचा अभी हमने स्कूल की कॉलेज की तो सारी डिग्रियां ले ली, अभी क्या करना है, तो बोर्ड देखा विश्वविद्यालय, तो सोचते थे इसमें जाना है, पर जाने की परमिशन मिले तभी तो जाए, फिर शरीर परमिशन नहीं दे रहा। तो जब यहाँ आए तो केवल एक ही उद्देश्य था कि पढ़ना है। दो बजा है तो लिख रहे हैं, ढाई बजा है तो लिख रहे हैं, फर्स्ट डे ज्ञान सुना तो पढ़ रहे हैं, उसको उसके क्वेश्चन आंसर लिख के ला रहे हैं। तो अगर आपको पढ़ाई से प्यार होगा तो योगी जीवन और सहज हो जाएगा। अगर आपको बातों से प्यार होगा तो बाप से प्यार नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखिए। जो फर्स्ट चांस आए हैं जरा हाथ खड़ा करें, जो फर्स्ट चांस बाबा से मिलने आए हैं वो हाथ खड़ा करें, बिल्कुल खुल के खड़ा करें, कोई उसकी बात नहीं है, खुशी से खड़ा करें, देखिए कितने हैं। तो अगर बातों से अभी भी प्यार रहा तो बाबा से प्यार नहीं होगा। इसलिए अपने से प्यार का अर्थ है बाबा से प्यार करना, क्योंकि हम दूसरों को तो समझा देते हैं बड़े अच्छे से कि सेल्फ रियलाइजेशन इज द गॉड रियलाइजेशन, स्व अनुभूति ही परमात्मा अनुभूति कराएगी, और स्व अनुभूति के अंतर्गत ये सारी बातें आती हैं। फर्स्ट दिन से सबको इस बात का अटेंशन देना है कि हमें क्या करना है। यहाँ जो भी आए हैं एक क्षण भी इधर उधर की बात ना करें, कभी बाबा के कमरे में, कभी कुटिया में, कभी तपस्या धाम में, कभी कहीं, आप जितना समय मिले सेवा करने के बाद, सेवा करने के समय पर भी केवल अपने मन को बाबा के साथ, बाबा के कार्य करते भी बाबा को याद करते रहें। स्नान गृह में भी जाएं तो मैं थोड़ा सा एक छोटा सा अनुभव आपसे शेयर करना चाहूंगी कि वहां पर भी आप अकेले ना नहाएं, याद रहे कि यह शरीर मैंने बाबा को दिया है और इस घोड़े को, इस रथ को इसलिए तैयार कर रहे हैं कि विश्व सेवा में अनेकों आत्माएं मेरे संपर्क में आएंगी, तो शरीर को शुद्ध पावन बनाना आवश्यक है। दूसरा, इसको ऐसा पवित्र रखना है कि दूसरे हमसे हेट नहीं करें, ठीक है। उस समय ये याद रहे, बाबा मैं इस विनाशी शरीर को नहला रहा हूँ परंतु आप मेरी आत्मा को पावन बना रहे हैं, आप मेरी आत्मा को कितने सुंदर ज्ञान गंगा से स्नान रोज करा रहे हैं। यदि इतना भी उस समय याद रहेगा तो देह का भान सवय से वैसे ही टूटना शुरू हो जाएगा। प्रातः की ही पहली पढ़ाई जो है आपकी योग है, और योग के बाद स्नान करते हैं। कम लोग हैं जो सवेरे पहले नहा के फिर योग में बैठते हैं, कुछ लोग बैठते होंगे, तो ये भी बात ध्यान रखें। फिर ज्ञान स्नान करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। यहाँ भी कई आए, हम देखते इधर खड़े उधर खड़े हैं, क्लासेस हो रही है, तो ज्ञान स्नान जो है वो हमारी योग की शक्ति का आधार है, योग की शक्ति का आधार है। जितना जितना ज्ञान की गहराई में जाने का शौक होगा, कहते हैं ना जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं रही एक बाबरी सो जाए किनारे रही बैठ। तो जो बिल्कुल नीचे जाता है, ऊपर तो सागर में खारा पानी होता है, थोड़ा और गहराई में जाते हैं थोड़ा मीठा मिलता है, जब बिल्कुल नीचे जाते हैं तो क्या पाते हैं, रत्न, उनको मिलते हैं रत्न। तो जो आत्माएं ज्ञान की गहराई में जाने की शौकीन होती हैं, वो योगी तू आत्मा सहज ही बन जाती हैं। ये पाठ बिल्कुल पक्का कर लीजिए, क्योंकि नियोगी भी वही बनेगा, नियोजन वही करेगा जिसने कुछ संचयन किया होगा। किस चीज का नियोजन करेंगे, जब आपके पास 10-15 कोई फूल है और आपको कहा गया इस स्टेज को डेकोरेट करो, तो आप उसको तभी तो लाइन से या सिस्टम से या क्रॉस वाइज तभी तो लगाएंगे जब आपके पास हैं, उपलब्ध हैं। तो इसी तरह से जब ज्ञान की खजाना से निकले हुए मोती आपके पास हैं, तो जब योग में बैठेंगे तो मनन चिंतन, रूह रियान, या बाबा से मिलन, या निसंकल्प समाधि उसी आत्मा की होगी जिस आत्मा को देह की वृत्ति, देह की प्रवृत्ति, देह की स्मृति बिल्कुल भूल चुकी होगी। और इसको भुलाने का एकमात्र साधन है ज्ञान की गहराई में, ज्ञान के विस्तार में, ज्ञान के मन चिंतन में जाना। उसके बाद फिर आती है, जब हम नियोगी बन गए, योगी बन गए, प्रयोगी बन गए, तब हम बनते सहयोगी। जिसको बाबा ने एक गीत बनवाया था पहले, जिस गीत की लाइन थी कि योगी बड़े सहयोगी जिनके हों सब शीतल अंग। तो सर्व कर्मेंद्रियों पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली है वही आत्माएं सहयोगी बनती हैं। अभी बाबा के जनवरी के स्लोगन में एक वाक्य था एक दिन का, जिसमें बाबा ने, डेट स्मृति नहीं आ रही है, बाबा ने कहा था कि ब्राह्मणों की सफलता का निशानी है सहयोगी बनना, सहयोग मिलना, सहयोगी सहयोग देना। तो सहज सहयोग देना या लेना, ये प्रवृत्ति भी इस बात को बताती है कि वो आत्मा योगी है। योगी जीवन की ये निशानी बताई थी बाबा ने, सबको याद होगा ये पॉइंट था। तो आज ये सभी प्रतिज्ञा करें कि मैं आत्मा अपनी पहले सहयोगी बनूं, पहले अपनी सहयोगी बनूं। मैं आत्मा अपनी सहयोगी बनूं का क्या अर्थ है, कि मैं आत्मा किसी भी प्रकार से द्वंद में, चिंतन के बाद परचिंतन में, या किसी भी प्रकार से किसी से क्रॉस क्वेश्चन में, डिबेट में, अपना समय शक्ति संकल्प ज्ञान से मिले खजाने को वेस्ट नहीं करूं। यह है अपना सहयोगी बनना, अर्थात एक सुलझी हुई आत्मा बनूं, सरल चित्त आत्मा बनूं, स्वयं के प्रति अटेंटिव रहूं, क्योंकि अटेंशन अगर होगा तो टेंशन कभी भी नहीं आएगा। और जितना आप स्ट्रेस फ्री होंगे उतने अच्छे योगी बन जाएंगे, उतने सहज योगी बन जाएंगे। कई लोग उठने का ही स्ट्रेस लेते हैं, 4 बजे उठना है मुझे, 4 बजे उठना है मुझे, 4 बजे उठना है। अब अगर हमने ये बार बार सोचा ना, तो ये भी हमारे लिए एक समस्या बन जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग, जो नए भाई बहन है विशेष ध्यान दें, उठना तो बाबा उठाता ही है, चिड़िया पक्षी तक को उठाता है, मनुष्यों को भी उठाता है। आपको मालूम होगा चिड़िया भी सुबह सुबह चहचहाने लगती है, क्यों, क्योंकि प्रकृति का नियम है भोर पहर जागृति। तो ये बात स्मृति में रखें कि मैं जागती ज्योति आत्मा हूं। उस समय घड़ी मत देखिए, अरे अभी तो 3 बजा है, अभी 3:15 है। अगर आपने एक भी बार थोड़ा सा संकल्प ढीला किया तो माया आपको प्रेम से, 63 जन्मों की आदत है उसकी, वो आपको क्या करेगी, सुला देगी। इसलिए प्लीज 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 ये संकल्प कर ले कि मुझ आत्मा को अमृत वेले के समय तक, माने 2 से 5, किसी भी समय में जब भी आंख खुलती है, जब आंख खुली तब हुआ सवेरा। और जिस आत्मा ने ये पाठ पक्का किया है तो वो रात्रि को भी जागती ज्योति रहता है, उसको रात्रि को कभी देहधारियों के स्वप्न नहीं आएंगे, साधारण स्वप्न नहीं आएंगे। अगर आए भी, पहले तो आएंगे नहीं, और आए भी तो सेवा के आएंगे, त्याग के आएंगे, समर्पण भाव के आएंगे, किसी का कल्याण के मार्ग बताने के आएंगे, पहले तो स्वप्न आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम बाबा की याद में, बाबा की गोद में विश्रामी हो जाते हैं। किस लिए? कि प्रातः पुनः अवतरण लेके शरीर में मुझे सेवा करनी है। और सेवा के चारों आयाम जो हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। पहले सेवा सेवा कर रहे हैं आप, लेकिन वास्तविकता क्या है? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। लेकिन बाबा ने ज्ञान में भी क्या कहा? योग में रहकर ज्ञान सुनाए और योग में रहकर ही ज्ञान सुने। सुनने वाले की भी वृत्ति में ये हो कि मैं बाबा की बातें सुन रहा हूँ, बाबा के दिए हुए वर्षन सुन रहा हूँ, बाबा की दी हुई वरदान सुन रहा हूँ, क्योंकि वास्तविक रूप में ये कुछ भी मेरा अपना नहीं है। जो भी आत्माएं बाबा की बनी, उन्हें ये अच्छा ज्ञान हो चुका है, श्रेष्ठ ज्ञान है। बिल्कुल नए भाई बहन को भी ज्ञान सुनाने को बिठाओ तो बहुत अच्छी बात सुनाते हैं, बहुत अच्छी। कई बार तो ऐसा लगता है कि ये तो हमसे भी ज्यादा अनुभवी, बहुत अच्छी, क्योंकि उनको दो घोड़ों को चलाने की आदत है। लौकिक को भी चला रहे हैं और अलौकिक की भी नॉलेज है उन्हें, है? तो देखिए, आप लोग इस बात का टेंशन दें कि मैं आत्मा कभी भी स्ट्रेस में हूं, अर्थात स्पष्ट है कि मैं बॉडी कॉन्शियस में हूं। देह स्मृति मुझे ज्यादा समय रहती है, एक एक सेकंड में मैं अपना, एक घंटे में कम से कम एक मिनट क्या करूं? सेल्फ चेकिंग, स्वयं को परखो, क्योंकि बाबा ने परख शक्ति दी हुई है। स्वयं को देखो कि मैं कहां तक बाबा की बातों को फॉलो कर रहा हूं, मेरी अवस्था कहां तक उपराम बन रही है, क्योंकि इसके बाद हमें क्या बनना है? फरिश्ता। आप जिस हाल में बैठे हैं, ये कौन सा हाल है? फरिश्तों की नगरी है, ये फरिश्तों का हाल है। तो जिनका फर्श से रिश्ता ना होगा वही फरिश्ता बनेंगे, और फरिश्ता बनने के लिए तीव्र ज्योति की ज्वाला जलना आवश्यक है। इसलिए हमने लगभग अपनी सभी छोटी छोटी क्लास में भी, वीके पाठशाला की तो बात छोड़िए, क्लासेस में भी ये अनाउंस किया हुआ है कि मुरली से कम आधा घंटा ज्वालामुखी योग किया जाए, क्योंकि दिन व दिन भले आपकी समस्या कम हो पर समाज की समस्या, देश की समस्या, राष्ट्र की समस्याएं, बीमारियों की समस्याएं, रोगों की समस्याएं भी, सुन रहे हैं ना, रोग के कीटाणु आ रहे, बढ़ती जा रही। अब इसे जलाने के लिए तीव्र अग्नि चाहिए, छोटी अग्नि से काम नहीं चल रहा है। इसलिए प्रत्येक आत्मा का कर्तव्य बनता है, बाबा का बच्चा होने के नाते, कि इसे तमो प्रधानता से हम बचाएं। और हमें तमो प्रधानता से बचाना है तो हमें संकल्पित होना पड़ेगा कि हम योग की शक्ति को आगे बढ़ाएं, पराकाष्ठा को आगे बढ़ाएं, ऊंचाइयों पर जाएं, हैं? योग की गहराइयों में भी जाना है और योग की ऊंचाइयों में भी जाता है, क्योंकि कहते हैं जितना ऊंचा जाती हूं आनंद मिलता है उतना। और गहराई में जाना अर्थात जो बाबा ने शक्तियां दी हैं उनको यूज करना सीखना, बाबा ने जो शक्तियां दी है उनको यूज करना सीखना, क्योंकि इनकम करना सहज है, विनियोजन करना, इन्वेस्ट करना कठिन है। इसलिए हमें जो बाबा ने शक्तियां दी हैं, परखने की शक्ति, समाने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, ये सारी शक्तियां जो भी हैं, समाने की शक्ति, इन सारी शक्तियों के लिए हमें बैलेंस बना करके और ये देख करके कि किस समय किस शक्ति की हमें आवश्यकता है, उसको यूज करना भी आना चाहिए, क्योंकि योगी को प्रयोगी तभी कहेंगे जब वो समय पर और जिसे जो चाहिए, जहां जो देना है वो दे। जैसे कोई की डेथ हुई और आप जाकर कैसे मरा था, क्या हुआ था, कौन सी बीमारी थी, इसमें समय लगा रहे माने आप योगी नहीं, भले जाइए वहां पर, जाते ही साथ उस मृतक के घर के सन्नाटे को योग की शक्ति से पावरफुल वाइब्रेशन में चेंज कर दी। उस समय में आपके अंदर सामना करने की शक्ति के साथ साथ सहयोगी वृत्ति होनी चाहिए, वृत्ति जो सहयोगी हो कि उन्हें दुख से उभारने को मैं यहां आया हूं, उनके दुखों को कुरेदने को नहीं। सुनते ही साथ बिल्कुल आप अपनी बीज रूप स्थिति में, अपनी शून्य स्थिति से उन्हें ऐसा योगदान दे, ऐसी शांति की शक्ति दे जिस शक्ति से सारी उनके घर की जो अथाह दुख की स्थिति है बिल्कुल सामान्य हो जाए वो लोग। ठीक इसी तरह मान लो बीमार के पास गए हैं आप, तो आप उसको सामना करने की शक्ति प्लस सहने की शक्ति इनकी प्रकंपन दें, क्योंकि उस समय में वो व्यक्ति अपने रोग को सहन नहीं कर पा रहा है, कड़ी बीमारी से लड़ रहा है, और उससे भी कड़ी बीमारी है देह अभिमान की बीमारी। इसलिए जितने ये रोगी देह अभिमान के संसार में मिलते हूं, पहले सुना था कि निबलो विकलो उनको तारे खुद तर जावे, बाबा ने योग सिखाया है किसके लिए, जो कमजोर आत्माएं उन्हें उठाने के लिए। हम ब्रह्मा बाबा के जीवन कहानी को गाते हुए ये कहते हैं कि गिरे हुओं को गले लगाना है, बाबा ने क्या सिखाया है, गिरे हुओं को गले लगाना। तो जो आत्माएं कमजोर है उनको केवल गले लगा लो, उसका अर्थ है आप समान ऊंच अवस्था वाला, श्रेष्ठ संस्कार वाला, श्रेष्ठ संकल्प वाला उन्हें बनाना, ये आपकी ड्यूटी है। अपनी उस ड्यूटी की ब्यूटी को निखारने के लिए आवश्यक है कि हम योग की शक्ति के द्वारा उन आत्माओं की मदद करें, और उस मदद को करने के लिए सकास देने की कला बाबा ने बच्चों को सिखाना शुरू किया, और उस शुरू करने के साथ आपको दादियों से, दीदियों से, हमारे बड़े पूर्वज भाइयों से प्रैक्टिकल में यहाँ अनुभूति कराई जा रही है। सेंटर पर दीदियां जो हैं वो आपको अनुभव करा रही हैं, उसे आप व्यवहार में लाएं, अपने जीवन में लाएं, क्योंकि ऑब्टेनिंग पावर, ग्रेस्पिंग पावर जो है उसको आप मिसयूज ना करने दें। दे तो रहा है भगवान, ले तो लिया आपने झोली में, पर देखिए कहीं से छेद तो नहीं, निकल तो नहीं जाता है, चेक करिए। और उस छेद को भरने का एकमात्र साधन है बाबा से सच्चा सच्चा स्नेह। आपने देखा होगा कोई भी फेविकॉल का इसका उसका उद्घाटन करते हैं एडवर्टाइजमेंट, तो उसमें कहते हैं अटूट बंधन, पक्का वायदा, बैंक वाले भी करते, तो क्या आपने ऐसा बंधन बांधा बाबा से? क्योंकि बाबा ने जो आपके लिए बैंक खोली है वो बैंक एक ऐसी बैंक है जो कभी भी अविनाशी बैंक है, जो कभी भी ना मर्ज होगी ना उसका कभी अंत होगा, ध्यान दीजिए। और वो खजाने उसने दिए हैं जो अखुट हैं, अविनाशी हैं, इसलिए उन अखुट अविनाशी खजानों को, अनमोल शक्तियों को, अनमोल वरदानों को अपने अंदर समाते हुए, उसका मनन चिंतन करते हुए प्रतिपल रूह रिहान करो, कभी सकास दो, कभी बाबा से मिलन मनाओ, कभी बाप दादा के स्नेह के सागर में खो जाओ, तरंगों में कभी लोगों को भी अनुभूति कराओ। जैसे देखते होंगे कोई खुद तैरता है तो दूसरों पर भी छींटे देता है, देखा होगा ना, तो जो अच्छा तैराक होता है वो उल्टा भी तैर लेता है, सीधा भी तैर लेता है ना, तैरता है ना। तो इस तरह की प्रवृत्ति अर्थात चाहे कोई आपके ऊपर कोई भी उल्टी समस्या भी आ जाए लेकिन आप तैर कर पार जाने की क्षमता रखते, कब रखते हैं, जब आप हल्के हैं। क्या चीज तैरती है बताइए, भारी चीज तैरती है क्या, कभी भारी चीज को तैरते देखा है? तो योगी आत्मा हल्की होती है, योगी आत्मा की बुद्धि हल्की होती है, योगी आत्मा के विचार श्रेष्ठ होते हैं, इस कारण से वो आत्मा कभी भी दुबन में नहीं फंसेगी। तो सबसे बड़ी जरूरत है कि मैं आत्मा हल्की कैसे बनूं? तो बाबा ने कई बार कहा है उसके लिए, बिल्कुल सहज कहा है कि हर कर्म की करने की जवाबदारी जिम्मेवारी भल तुम्हें दी है, पर कराने वाला कौन है? कराने वाला कौन है? बाबा। जिसे ये पक्का है हर क्षण कि करण करावनहार बाबा है। हम आज कहीं आपको एक शेयर करना चाहेंगे कि हम सारे टाइम, शायद आपको मालूम होगा भोपाल जोन का अकाउंट भी है, अकाउंट का काम करते रहे, या भाई बहनों के रेजिडेंस की व्यवस्था में सहयोगी रहे। हमने संकल्प भी नहीं लाया हमें क्या बोलना है, क्योंकि मुझे मालूम है बुलवाने वाला बाबा है और बोलना भी बाबा का ही है। जो कुछ उसने हमें पढ़ाया है ना, वही बोलना है, बाकी हमारी कोई एडिशन नहीं। इसी तरह से किसी भी कार्य को, ये हमने ऐसा छोटा सा आपको उदाहरण दिया, इसी भी तरह से किसी भी कार्य को, चाहे पब्लिक फंक्शन है, चाहे प्रोग्राम है, चाहे भाषण है, चाहे कोई काम है। अभी हमारा तो इतना छोटा सा बाबा की कुटिया है और बहन जी ने कहा हम 108 प्रोग्राम करने आ रहे हैं, 108 भाई बहन को, तो 118 करीबन हमारे यहाँ पहुंचे थे, क्योंकि शायद मालूम है आपको चित्रकूट है, तो चित्रकूट के देखने के उससे लोग और एड हो जाते हैं उसमें, है ना। लेकिन मैंने एक सेकंड को भी संकल्प नहीं लाया कि इतने लोगों को मैं कहाँ बिठाऊंगी, कहाँ खिलाऊंगी, क्या करूंगी, कैसे प्रोग्राम होगा, कोई संकल्प नहीं लाया, कुछ संकल्प नहीं लाया। और शायद साक्ष्यदर्शी कुछ भाई बहन अभी यहाँ बैठे भी होंगे जो वहां गए थे, और जो भाई बहन हमारे इधर के हैं वो भी यहाँ बैठे हैं, कि बाबा ने कैसे उस कार्य को किया ये हमें भी पता नहीं है और हमारे सेंटर के भाई बहनों को भी पता नहीं। और वंडर बहन जी एक दिन के लिए ही हमारे यहाँ व्यवस्था चाह रही थी, लेकिन कुछ ड्रामा ऐसा था कि हमारी जो बीके पाठशाला तर्रा में है वहां पर भाई जी की तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, तो हमने कहा बहन जी आप दूसरे दिन का भी भोजन वगैरह यहीं से करा के जाइए। बहन जी राजी भी हो गई। जिस गीता पाठशाला पे बीके पाठशाला पे ले भी नहीं जाना था, बहन जी बोली हमें दूसरे दिन भी स्नान करना है। आप लोग को मालूम है हमारी बहन जी को स्नान का बहुत शौक है कि पार्टी स्नान करना चाह रही। हमने कहा बहन जी हम आपको दूसरे दिन जमुना जी में स्नान कराएंगे, हमारी दूसरी पीके पाठशाला राजापुर में जहाँ रामायण लिखी गई है, क्योंकि हमारे यहाँ गुप्त गोदावरी भी है, मंदाकिनी भी है, पयसनी भी है, गंगा भी है, बहुत सारी नदियों के बीच में हम रह रहे हैं। तो बहन जी वहां गई, तो उन्होंने जो ज्ञान स्नान कराया उस स्नान के चलते बहन जी को प्रतिज्ञा करा ली बहन भाइयों ने वहां से, बहन जी जल्दी आइएगा दोबारा भट्टी करानी। तो ये भट्टी शब्द इसलिए आप लोग को सुना रही हूं कि योगी आत्मा हमेशा योग की भट्टी में रहे, क्योंकि उसकी एक ही हट्टी है, कौन सी? बाबा का घर। और निरंतर अपने इस चित्तकूट में बैठ के, ये चित्त के दोनों तरफ ये भवें हैं, इसके बीच में ये चित्त है और इस चित्तकूट में बैठी है आत्मा, इस चित्तकूट में बैठ करके आप निरंतर ज्ञान का चंदन घिसते रहे। शायद सुना होगा ना, चित्तकूट के घाट में भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर, सुना होगा ना। हमारी दादी जी, आदरणीय दादी जी जब थी, डॉक्टर राजयोगिनी प्रकाशमणि दादी जी, और ये एक रहस्य की बात और आप लोग को इस बीच में सुना देना चाहूंगी, क्योंकि अभी हमारे पास 2 मिनट हैं। हमारी आदरणीय दादी जी ने ही संकल्प शक्ति से भी और सशरीर भी जाके सबसे पहले चित्रकूट की धरनी पर बाबा का झंडा लहराया था। ये सबसे बड़ी बात है। साकार बाबा जी को निमंत्रण आया था, जो वहां के बाबूलाल गर्ग जी थे संस्थापक, जिन्होंने लोहिया धर्म रामायण संघ की स्थापना की थी। आप लोग को मालूम होगा विश्व का सबसे बड़ा रामायण मेला चित्रकूट में होता है, सारे विश्व के लोग वहां आते हैं प्रतिनिधि। तो उस रामायण मेले की प्रथम स्थापना में साकार बाबा जी को निमंत्रण दिया गया था अपने दादा लेखराज जी को, तो उन्होंने दादी जी जापान से सेवा करके लौटी बॉम्बे से, कहा बाबा मैं आ गई हूं। बाबा ने कहा बच्ची यहां नहीं आना है। तो बाबा क्या करना है फिर? बाबा ने कहा चित्रकूट चले जाओ। तो 5 भाई बहन वहां गए, और कितने परम सौभाग्यशाली हैं हम लोग जो उस भूमि में बाबा ने बीज बोने के बाद कर्म करने के लिए, हल चलाने के लिए भोपाल जोन को जवाबदारी दी और भोपाल जोन को वो सेवाएं प्राप्त हुई। और उनसे भी ज्यादा पद्मापदम भाग्य मुझे मिला कि मैं लगातार 25 वर्षों से साधु संतों के बीच में रह रही हूं और अपने बाबा का प्यार पाते हुए, उन आत्माओं को बाबा का प्यार बांटते हुए यहां पर हर एक अखाड़े से कम निर्मोही अखाड़ा, हमारा कामतानाथ मंदिर जिसके लिए लोग वहां बार बार जाते हैं दर्शन करने, इन समस्त पवित्र स्थानों के महारथी दादी जी से, आदरणीय दादी जी से मिले, बाबा के घर का अन्न खाया, आज भी महिमा गाते थकते नहीं हैं, हैं और निरंतर सभी आश रखते हैं कि हम कब वहां पहुंचे। ये बात अलग है कि उनकी अपनी दिनचर्याएं दूसरी हैं, नियमावली दूसरी हैं, तो थोड़ा कम आते हैं, लेकिन सभी चाहते हैं मधुबन घर आए। तो योगी तू आत्माएं बन, आप अपने अपने घर को मधुबन बनाए, स्थान को मधुबन बनाए, ऐसी कामना मेरी है। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स हमारी आदरणीय दीदी जी के लिए। तो जोरदार तालियां आदरणीय दीदी जी के लिए। आपने बहुत सुंदर रीति बताया कि परमात्म मिलन का आधार तप है और तप के बल से ही हमारी सब आशाएं पूर्ण हो सकती हैं। तो कैसे चलते फिरते हमें हर समय अटेंशन रखना है कि हमारी बुद्धि कहीं जाती तो नहीं है, तो चेक भी करना है, चेंज भी करना है और माया को चैलेंज भी करना है। तो पुनः बहुत बहुत थैंक्स आप सभी की ओर से आदरणीय दीदी जी को।